नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज हमें फिर से परमेश्वर के जीवित वचन का अध्ययन करने का समय दिया है और मैं उन भाई बहनों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम व्यवस्था विवरण की पुस्तकों से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 26 अध्याय तक का अध्ययन किया है और पिछले अध्ययन में हमने देखा था 40 कोड़े मारे जाने के विषय में और विधवाओं की सुरक्षा के विषय में और इतना ही नहीं, अमालेकियों को दंड के विषय में हमने देखा और आखिर के हिस्से में हमने यह भी देखा कि इसराइलियों को पहला फल जो उनके उपज में से होता था परमेश्वर के भवन में धन्यवाद के रूप में लाना था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर के निकटता में आए, प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु आप सचमुच में स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम मनुष्यों को इस धरती पर इसलिए रचा है ताकि हम आपके साथ संगति करें। इस समय हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें और उसी के अनुसार से हम चलने वाले बन जाएं। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, चिंतित हैं, अपने नौकरी के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं के लिए। पिता परमेश्वर, उन सब की आप सहायता करें ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे भी आशीष को प्राप्त करें और आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद पिताजी हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को 27 अध्याय से आरंभ कर रहे हैं। अब हम व्यवस्था विवरण के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में आ चुके हैं। यह मूसा द्वारा किया गया तीसरी बार दोहराव है। यह इस पुस्तक के दूसरे मुख्य भाग से संबंधित है जो भूमि के भविष्य के बारे में है। मित्रों, यह पुस्तक का तीसरा भाग है जो अध्याय 17 से 30 तक फैला हुआ है और हम इस भाग में मुख्यतः पलिस्तीनी वाचा को देखते हैं जिसे स्वयं परमेश्वर ने इसराइल के साथ में बांधा था। मैं अध्याय 28 से 30 तक के भाग को इसराइलियों के कनान में पहुंचने से पहले के ऐतिहासिक अध्याय के रूप में मानता हूं। व्यवस्था विवरण 29 उसके 30 अध्याय के 10 पद तक का भाग हमें पलिस्ती के वाचा के बारे में बताता है। मित्रों, जब हम इस नए भाग की शुरुआत करते हैं तो मैं वाचा के बारे में कुछ बताना उचित समझता हूं। यह शब्द कई बार प्रयोग किया गया है और कई प्रकार की वाचाएं भी हैं। पहला, हम देखते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से वाचा बांधते हैं और दूसरा, एक देश दूसरे देश के साथ वाचा बांधते हैं और इस प्रकार की वाचाओं का जिक्र हम बाइबल में भी पाते हैं। हम पुराने नियम में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ वाचा बांधता है और उसने अपने चुने हुए लोगों के साथ भी वाचा बांधी। मेरे मित्रों, हमने आदम के साथ बांधी गई वाचा का अध्ययन किया है, हमने नूह के साथ बांधी गई वाचा और अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा का भी अध्ययन किया है और अब पलिस्तियों की वाचा को देखेंगे। परमेश्वर द्वारा बांधी गई वाचाओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला शर्त की वाचा, दूसरा बिना शर्त की वाचा। हम इन्हें अनंतकालीन या सामान्य वाचा भी कह सकते हैं। अनंतकाल की वाचा सर्वता की वाचा है और यह बिना शर्त की वाचा है। सामान्य वाचा शर्त की वाचा है और हमें इन दोनों के बीच की भिन्नता को पहचान कर बढ़ना है, अर्थात हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन शर्त की वाचा है और कौन बिना शर्त की वाचा है। परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी तो यह बिना शर्त की वाचा थी। जो वाचा मूसा के साथ बांधी गई थी अर्थात 10 आज्ञाएं, वह शर्त की वाचा थी। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ें। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस भाई को ऐसे लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जब फिलिस्तीनियों के साथ में वाचा बांधा, जिसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं और इस अध्याय में भी हम करेंगे, वह बिना शर्त की वाचा पर आधारित है। इस वाचा का मतलब इसराइल के भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि सब इस समय यर्दन नदी के पूर्वी तट पर इस पार खड़े हैं। ये सब अभी कनान अर्थात प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर हैं, अभी तक उन्हें पार नहीं किया है। और यह नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी जंगल में मर गई और मिट गई। मूसा स्वयं भी इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि पुस्तक का यह भाग मूसा के द्वारा पुनः दोहराने के साथ में समाप्त होता है। मेरे मित्रों, मूसा मर जाता है परंतु इसराइली एक नए अगुए के नेतृत्व में देश के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। अब पुस्तक का यह भाग विशेषता भविष्य सूचक है। वे लोग जो उस देश के अंदर प्रवेश करेंगे, हम पुस्तक के इस भाग में विशेष भविष्यवाणियों को देखेंगे जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में सराहनीय हैं। तो आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 27 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ें। लिखा है, फिर इसराइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबको मानना, और जब तुम यर्दन पार होके उस देश में पहुंचो तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि उन्हें बताया गया कि जब वे यर्दन के पार जाएंगे तब 10 आज्ञाओं को पत्थर पर उन्हें लिखना और पूर्णतः प्रकट होना आवश्यक है। उनका उस देश में बसे रहना परमेश्वर की आज्ञा पर आधारित था। यह एक शर्त पर आधारित वाचा थी, परंतु जो भूमि उन्हें दी गई थी वह बिना शर्त की वाचा पर आधारित थी। यह देश परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया था और यह बिना किसी शर्त पर आधारित था। परमेश्वर अपने निज इसराइल को अपने निज देश में वापस ला रहा है क्योंकि यह देश उन्हें दे दिया गया है। मेरे मित्रों, यह उनका अपना देश है जिसे आज के संदर्भ में हमें समझना अति आवश्यक है। आइए हम आगे पढ़ें। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसके 4-28 पद में लिखा है, फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है उन्हें तुम यर्दन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना और उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की ही बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना। मेरे मित्रों, परमेश्वर की व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से लिखी जाती थी, बल्कि यह उनके आंखों के सम्मुख हमेशा बनी रहती थी। ताकि चाहे वे घर में या घर के बाहर उन्हें 10 आज्ञाएं अपने घर और उनके दरवाजों पर भी लिखा हुआ दिखना चाहिए था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 27 अध्याय उसके 9 से 12 पद में आगे पढ़ते हैं। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इसराइलियों से यह भी कहा कि हे इसराइल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा का हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञाएं और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम यर्दन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकर, यूसुफ और विन्यामिन के ये गिरिजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। ध्यान दें, जब वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे तब सभी इसराइली लोगों पर आशीष वचन गिरिजीम पहाड़ पर सुनाए गए। यहाँ तक बताया गया है कि कौन सा गोत्र आशीष वचन कहेगा। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 27 उसके 13 पद में लिखा है, और रूबेन, गाद, आशेर, जबुलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके शाप सुनाए। मित्रों ध्यान दीजिए कि जिस गोत्र को शापित वचन कहने थे उन्हें एबाल पर्वत पर जाना था। यह वही पर्वत है जहां पर सामरे स्त्री पानी भरने को आई थी। वह कुआं आज भी वहां पर स्थिर है। आशीष वचन गिरिजीम पर्वत पर कहे गए थे और श्रापित वचन एबाल पर्वत पर से बोले जाने थे। श्रापों की एक सूची दी गई, जब वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाए तो उन्हें इन शर्तों का पालन करना था। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गोत्र एक किरायेदार था जिसे किराया देना आवश्यक था। परमेश्वर भूमि का स्वामी है और हमारे लिए आज्ञा पालन करना किराया देने जैसा है, जबकि इसराइल राष्ट्र एक किराएदार से बढ़कर था, क्योंकि यह देश उसे स्वयं परमेश्वर ने उन्हें निज अनंत संपत्ति होने के लिए दिया था। जो भी हो, अगर कोई पीढ़ी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो उसे उस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। बेशक भूमि उन्हीं की विरासत बनी रहेगी, परंतु वे वहां पर रहने नहीं पाएंगे। इसी कारण रियल एस्टेट का भाग बहुत नाजुक है। यही कारण है कि दुनिया का ऊपरी हिस्सा बहुत ही संवेदनशील है। विश्वव्यापी स्तर पर बहुत से लोगों का विश्वास है कि इसी देश से विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, अर्थात होने की संभावना है, और यह सच भी है। यहाँ पर 12 श्रापों की सूची दी गई है। मैं इन सब की व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि वे स्वयं बहुत संदेश दे रही हैं। हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 27 उसके 15 पद में लिखा है कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर व ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहें आमीन। इनका इन 10 आज्ञाओं में से प्रथम 2 आज्ञाओं से संबंध है। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 27 के 16 पद में, शापित है वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। यह 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा से संबंधित है। तब हम व्यवस्था विवरण 27 उसके 26 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहें आमीन। मेरे मित्रों, जब आप इस अध्याय में सभी वचनों को पढ़ लें तब आप देखेंगे कि यह सब 10 आज्ञाओं के उल्लंघन से संबंधित है। इसलिए यह श्रापित बातों पर भी हमें ध्यान रखना है कि यह किसके लिए लागू होता है। मित्रों, यहाँ पर 27 अध्याय समाप्त होता है और अब हम अध्याय 28 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसमें हम देखेंगे इसराइलियों का पहले से लिखित इतिहास। इस अध्याय में हम इसराइल के भविष्य के बारे में जो भाग है उस पर अध्ययन करेंगे। मूसा ने शर्त की वाचा की घोषणा कर दी थी। इसराइली लोगों के जीवन में केवल तभी आशीष आ सकती है जब तक कि वो आज्ञाकारी बने रहते हैं। उनकी अनाज्ञाकारिता उन पर श्राप ले आएगी, जो उनके लिए यहाँ पर बता दिया गया है। मित्रों, हमारे पास यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो यह सत्य बताता है कि इसराइल इससे पहले कि कनान देश में पहुंचता, उनके पहले से ही लिखित इतिहास के बारे में कुछ दिया गया है। उनके लिए तीन भविष्यवाणियां की गई हैं जो बताती हैं कि किस तरह से वे वापस मुड़कर आएंगे, जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं और अभी भी तीसरी भविष्यवाणी बाकी है कि वे अपने देश में वापस आएंगे और उसका एक भाग भविष्य के लिए बचा हुआ है। आइए अब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। मेरे मित्रों, यदि तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो, यदि शब्द यदि को जो एक बड़े आकार में देखें, तो यह शर्त की वाचा का एक भाग है। वे केवल आशीष तो पाएंगे और तब पाएंगे जब वे आज्ञाकारी बने रहेंगे। तब हम व्यवस्था विवरण 28 उसके 3 से 6 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। मित्रों, जब आप इसे पढ़ेंगे तो शायद आप अचंभा करेंगे कि यहाँ पर 12 श्रापों को दिया गया है, लेकिन केवल 6 ही आशीष हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे भी आशीषों को प्राप्त करना है। हमारा प्रभु पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर से उसने उद्घोषणा की, जो पहाड़ी उपदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसने किस प्रकार आरंभ किया? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मित्रों, तब आप आगे पढ़ेंगे कि हमारा व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। यह माने कि प्रभु के संदेश का प्रथम चेतावनी भरा भाग यही है जो सभी इसराइलियों के लिए प्रेरणा देता है कि वे ध्यान से उसकी बातों को माने। अब वह उनको आशीषों के लिए आह्वान देता है जो उनके काफी इंतजार के बाद आने वाली है, और यह जो उनके इतिहास का निरीक्षण का समय है, क्योंकि इस समय तक वे 2 बार गुलामी के अनुभव से गुजर चुके हैं और अब एक और बार उन्हें गुलामी में जाना था जो उन्हें सारी पृथ्वी पर तितर पितर कर देगी। मेरे मित्रों, यदि वे आज्ञाकारी बने रहेंगे तब उनके लिए आशीष की प्रतिज्ञा है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। मेरे मित्रों, हम पाते हैं कि अनाज्ञाकारिता के कारण उन पर दंड आएगा, और अब जो श्राप उन पर आएंगे वे भी इस यदि के आधार पर होंगे जो लिखित में दिया गया है। तो आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 28 उसके 15 पद में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। मेरे मित्रों, हम फिर देखेंगे कि यह शर्त की वाचा पर आधारित है। अब हम वचन के उस बहुत महत्वपूर्ण भाग पर आ गए हैं यह इसराइल का इतिहास है जो उस देश में है जो पहले से लिखित रूप में दिया गया है। मेरे मित्रों, वचन में तीन बार इसराइलियों के खिलाफ भविष्यवाणी दी गई है कि वे तीन बार गुलामी में जाएंगे, अर्थात दासत्व या बंधुआई में जाएंगे और फिर तीन बार वापस लौट आएंगे। इसमें से प्रथम परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। आगे हम पाते हैं कि इसराइली लगभग 430 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में रहे। जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से छुड़ाकर वापस लाया, और हम इसी बात का व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्ययन कर रहे हैं, अब वे यर्दन नदी के पूर्व तट पर हैं। परमेश्वर उन्हें पहली बार वापस ला रहा है। यहोशू की पुस्तक में यह पढ़ेंगे कि वे किस तरह कनान देश में प्रवेश करते हैं, और न्यायों की पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि वे किस तरह से उस देश में बस जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है जो अब लिखित रूप में हमारे पास है। मेरे मित्रों, अब इससे पहले कि वे देश में प्रवेश करें, उनके लिए निष्कासन की भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी है, अर्थात की जा चुकी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 32 से 34 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तेरे बेटे और बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता रहेगा और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। मेरे मित्रों, यह वचन यहोशू में लिखित रूप में पूरे हो चुके हैं, जो अंतिम राजा सिद्दिकिया के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को घात किया गया, तब उसकी आंखें निकाल दी गई और उसे अंधा और असहाय करके बेबीलोन में, अर्थात बाबुल के देश में ले जाया गया। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 35 से 37 पद में आगे पढ़ते हैं, यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिख तक की असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा, और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। मित्रों, अब यही बाबुल की बंधुआई है जो इतिहास में मौजूद है। हमारे पास इसका लिखित ब्यौरा है। हम आने वाले समय में इसका और भी गहराई से अध्ययन करेंगे, जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ेंगे जो पूर्ण हुई है, जिनका लिखित ब्यौरा राजाओं के इतिहास में हमें मिलता है। मित्रों, यह सब उनके साथ क्यों हुआ? यह केवल उनकी अनाज्ञाकारिता का परिणाम था। परमेश्वर ने उन्हें यह यदि दिए हुए थे। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि यदि तुम आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष पाओगे, परंतु यदि तुम आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम देश से बाहर निकाल दिए जाओगे। इसराइली फिर से बाबुल से छुटकारा पाकर वापस अपने देश में आते हैं, जिनकी वापसी का ब्यौरा या जिक्र एज्रा और नहेमिया की पुस्तक में दिया गया है। भविष्यवक्ताओं हगै, जकर्याह और मलाकी की पुस्तक में भी दिया गया है। फिर क्या यह दूसरी बार भविष्यवाणी है कि जो उनके देश में वापस आने के बारे में है? मित्रों, यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और तीसरी बार इसराइलियों का तितर बितर होना रोम द्वारा उनके देश पर कब्जा करने के कारण हुआ, जो लिखित रूप में उपलब्ध है और जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी। आइए हम व्यवस्था विवरण 28 उसके 48 पद को पढ़ें। लिखा है, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। मेरे अध्ययन के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, जिन्हें मैं बेहद पसंद करता हूं, जो जोसीफस के द्वारा लिखित इतिहास है। जोसीफस एक इतिहासकार है जो बताता है कि किस तरह टाइटस राजा ने अर्थात तीतुस राजा की अगुवाई में रोम का आगमन हुआ। रोम को एक लोहे के रूप में जाना जाता था, अर्थात कठोर राजा के रूप में, जिन्होंने बड़ी कठोरता से शासन किया। जो इस भविष्यवाणी को पूरा करता है वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेगा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए पहले ही भविष्यवाणी की बातों को लिख दिया था, और तब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये भविष्यवाणियां पूरी हुई। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है और परमेश्वर के वचन में से नई बातों को सीखा है। हम अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे और इससे आगे की बातों को सीखेंगे। तब तक आप प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
पर्वत की ओर उठाऊंगा मैं आंखें अपनी, पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कदम राहों